दीदी का स्वागत करे, परिचय दे, तो ज्ञान सरोवर से पवित्रता और निर्मलता का फरिश्ता उड़ता हुआ आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी हम सब के बीच विराजमान हैं। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मम्मा बाबा दादियों की पालना में पली हुई, न सिर्फ पली हुई लेकिन उनके हाथों से गढ़ी हुई दर्शनीय मूरत दीदी हमारे बीच में है। दीदी ने यह ज्ञान मुंबई महानगरी से प्राप्त किया। उस समय आप अपनी मेडिकल स्टडीज कर रहे थे, एमबीबीएस लगभग एमबीबीएस पूरा कर चुका था और फिर आपको बाबा का ज्ञान मिला और कुछ ही समय में बाबा की राय सलाह से सेवा केंद्र भी खोला और क्लिनिक भी खोली। दीदी वो पहली कन्या है जिनको उनके लौकिक पिता ने सेवा केंद्र दहेज के रूप में दिया। शुरू से ही दीदी निश्चय बुद्धि रहे और निश्चय बुद्धि बनकर शुरू से ही तन मन धन सब कुछ बाबा की सेवा में लगाया। और फिर तो 1966 में सेवा केंद्र और क्लिनिक खोला, सेवाएं चलती रही और 71 में बाबा ने आपको विदेश सेवा के लिए चुना। 71 से 78 तक विदेश की धरनी पर अलग अलग स्थानों पर आप सेवार्थ गए, जैसे कि लंदन, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, न्यूजीलैंड, मॉरिशस आदि आदि अलग अलग स्थानों पर जाके सेवा केंद्र खोलने के निमित्त बने। बाबा के छिपे हुए लालों को आपने निकाला और फिर 1978 में आपने ऑस्ट्रेलिया सिडनी को अपना बेस बनाया और 78 से लेकर 2008 तक आपने वहीं सिडनी में रहकर पूरे एशिया पैसिफिक रीजन में बाबा की सेवाओं का विस्तार किया, जिसके अंतर्गत करीब 18-19 देश है जहां बाबा के सेवा केंद्र है। तो वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन के भी डायरेक्टर हैं, तो ज्ञान सरोवर अकेडमी के भी डायरेक्टर है, क्योंकि 2008 के बाद हम सभी जानते हैं कैसे बाबा ने 2009 में दीदी को ज्ञान सरोवर अकेडमी के निमित्त बनाया। और फिर जैसे जैसे दादियां अव्यक्त होती चली गई, बाबा ने आपके कंधों पर और जिम्मेवारी डाली। दीदी वर्तमान में हमारे यज्ञ के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, लेकिन फिर भी बहुत लाइट रहते हैं, बहुत इजी रहते हैं। इजी और बिजी का बहुत सुंदर बैलेंस है। न सिर्फ इतना, जितनी ज्यादा जिम्मेवारी उतना ज्यादा साइलेंस, उतना ज्यादा पवित्रता। उनके अस्तित्व से, उनके उपस्थिति से हम अनुभव करते हैं। तो दीदी ने बाबा की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार कर बाबा की आशाओं के अनुरूप ये कैसे अपनी न्यारी और प्यारी स्थिति बनाई है, कैसे अपने आप को जिम्मेवारियों में भी शामिल करते हैं लेकिन फिर भी उपराम रहते हैं, दीदी हम आज आपके अनुभव सुनेंगे ताकि हम भी ऐसी स्थिति बना सके। आदरणीय दीदी जी,
ओम शांति। मेरा सद्भाग्य था जो पहले ही दिन मैं मम्मा से मिली। उन दिनों में मम्मा 9 मास बंबई में रही। मामा बाबा मधुबन से जनवरी मास में यूजुअली उनको हम दिल्ली में बंबई में बुलाते थे कि दिल्ली बंबई में बहुत ठंडी है, मधुबन में बहुत ठंडी है, आप यहाँ आओ, चेकिंग भी कराओ और बच्चों को रिफ्रेश भी करो, क्योंकि मधुबन उन दिनों में जनवरी में बहुत थोड़े आते थे। और मम्मा तो टूर करती रहती थी, तो उषा हमारी लौकिक फ्रेंड थी, हम यूनिवर्सिटी में साथ में पढ़ते थे। तो जब मम्मा आई और उसको भी थोड़ा निश्चय हुआ, उसको निश्चय होने में टाइम लग गया, तो जब निश्चय हुआ तो उसने मुझे मम्मा का प्रवचन सुनने बुलाया, क्योंकि मम्मा संडे संडे उस समय वाटरलू मेंशन में हमारा सेवा केंद्र था, तो मम्मा संडे संडे पब्लिक लेक्चर देती थी और ब्राह्मण अपने मित्र संबंधियों को बुलाते थे। थोड़े माताएं वहां से ये इसके पीछे आ जाओ, तो यहाँ तक सब जब माताएं हैं ना, आओ आओ जरा आगे आओ माता, क्योंकि वहां माताएं सब घुस घुस के आपस में बैठे हैं। तो पहले दिन मम्मा का प्रवचन सुना, मैं थोड़ी जल्दी पहुंची थी, तो उस समय निर्मल शांता दादी बैठकर 5-6 जो हम जल्दी आए थे उनके साथ बातचीत करती थी कि यहाँ का लक्ष्य क्या है, संपूर्ण निर्विकारी बनना। मुझे ये बात अच्छी लग गई। तो मम्मा का प्रवचन पूरा हुआ तो उषा ने कहा तुम कोर्स करो, तो दूसरे दिन से मैंने कोर्स आरंभ किया। उस समय मैं हॉस्पिटल में काम करती थी, तो रोज शाम को 2 घंटा छुट्टी मिलती थी, करके हम 2 के 3 घंटे निकाल देती थी, क्योंकि बंबई में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना 1.5 घंटा लग जाता है, आना जाना और कोर्स करना। तो जब 7 दिन पूरा हुआ तो उषा ने हमें मम्मा से इंट्रोड्यूस कराया कि ये मेरी फ्रेंड है, डॉक्टर है, आदि आदि। और उस समय कुंज दादी पटना से आई थी बंबई। बाबा क्या करते थे, मम्मा बाबा आते थे तो बड़ी बड़ी बहनों को दादियों को इधर उधर से बुलाते थे कि आओ बंबई भी देखो, रिफ्रेश भी हो जाओ मम्मा बाबा से मिलके। तो कुंज दादी ने हमें कोर्स कराया, तो मम्मा ने मेरे से बात की। मैंने कहा मम्मा मेरी टीचर जा रही है, तो मम्मा ने कहा कोई बात नहीं, निर्वन शांता दादी है, वो तुमको देखेंगी। फिर मम्मा ने पूछा कोई सवाल है, मैंने कहा कि मम्मा ये कृष्ण जब पहला पैदा हुआ तो सतो प्रधान था, और क्राइस्ट का भी पहला जन्म सतो प्रधान, तो उसमें क्या फर्क है? तो मम्मा ने बताया कि क्राइस्ट का जन्म सतो था, परंतु द्वापर युगी सतो था। फिर तो मम्मा का क्लास सवेरे होता था, क्योंकि बम्बई में दूर दूर से लोग आते थे, जैसे हम लोग हैं कांदिवली से जाते थे, कोई कांदिवली मलाण बोरीवली से जाते थे, कोई सायन से, कोई मुलुंद से, कोई कहाँ कहाँ से आते थे उस समय, इसलिए एक ही बार आ सकते थे। तो मम्मा भी सिर्फ सवेरे क्लास कराते थे और मेरी सवेरे हॉस्पिटल में ड्यूटी थी, तो रोज तो नहीं जा सकती थी, सिर्फ संडे जाती थी, वो भी संडे जब मैं ड्यूटी पर होती थी तो जा सकती थी, क्योंकि संडे पर यदि छुट्टी होती थी तो क्या होता था कि हम लोग के घर जाते थे, हॉस्पिटल में रहना होता था, वो हॉस्पिटल भाईकला पर थी, सेंटर वाटरलू में था और हमारा घर कांदिवली था, तो कांदिवली रोज तो जा नहीं सकती थी, सिर्फ संडे संडे जाती थी। तो इसलिए मम्मा के थोड़े ही क्लास अटेंड किए, पर मम्मा का दो पॉइंट हमको बहुत अच्छी लगी। एक थी, मम्मा कहती थी कि आपको अपने दिल की कोई भी कंप्लेन हो, नेगेटिव बातें हैं, सीनियर को करनी है, इधर उधर नहीं करनी है। तो उसके लिए मम्मा मिसाल देती थी, सब जो आपकी तबीयत ठीक नहीं, उल्टी का ख्याल आता है तो क्या करेंगे, घर में होंगे तो बाथरूम में दौड़ेंगे कि वहां जाकर वॉश बेसिन में या फ्लश में उल्टी करके फ्लश कर देवे, नहीं यदि रास्ते के बीच में आप करेंगे उल्टी तो क्या होगा, जो भी पास होते हैं उसको भी नाक पर हाथ लग कर जाना पड़ेगा, उस उल्टी पर मक्खी बैठेंगी, वो मक्खी जाकर किसी के खाने पर बैठेंगी तो उसको भी बीमारी हो जाएंगी। इसलिए वीक लोगों को आप अपने दिल की नेगेटिव बातें कहेंगे तो क्या होगा, उसको भी माया लग जाएंगी, वो भी उस ओपिनियन से देखेंगे। तो इसलिए जैसे बीमारी है तो डॉक्टर से दवाई करेंगे, इधर उधर बात करने से तो आपकी बीमारी अच्छी नहीं होंगी, इसलिए सीनियर से बात करके राय सलाह करो। दूसरी पॉइंट थी कि इंडिया में क्या करते हैं, घर सफाई करते कचरा क्या करेंगे, रास्ते पर डाल देंगे जस्ट गेट के बाहर। अभी पड़ोसी वाला तो वो कचरा घर में नहीं लाएंगे, अपने आप ही निकाल रहे, तो सब निकाल रहे हैं अपना घर का कचरा। इसलिए इसी रीति से आप है ना, औरों का निकला हुआ कचरा, इधर उधर की बातें अपने मन में नहीं रखो, नहीं तो आपका मन भी खराब हो जाएगा। तो जो बात है वो दूसरे वाले फेंकना चाहते, आप क्यों रखना चाहते हैं। और मम्मा, मम्मा कैसे बनी, क्योंकि मम्मा से पहले उसकी माँ मौसी सब ज्ञान में आए थे, दादी प्रकाशमणि भी पहले आई थी, और ब्रह्मा बाबा की फैमिली भी सारी ज्ञान में थी, निर्मल शांता दादी, ब्रिजेंद्रा दादी, जसोदा मैया। पर मम्मा शुरू से मुरली की मौत शौकीन थी। जब मधुबन में उस समय तो मम्मा बाबा के टाइम सिर्फ, या हम आने के बाद तो सिर्फ हिस्ट्री हॉल ही था, उसके पहले तो ये ऑफिस में ही बाबा क्लास कराते थे। तो बाबा मुरली सुनाते थे, बाबा एक गद्दी पर बैठते थे, मम्मा एक गद्दी पर बैठे, पूरा टाइम ऐसा देखकर मुरली सुनते थे। और मुरली भी कई बार पढ़ती थी। जब मुंबई में थी मम्मा तो यहाँ से फास्ट पोस्ट से मुरली आती थी। रोज सवेरे जब बाबा मुरली सुनाते थे तो शांतामणि दादी या ईशु दादी अपने हाथ से मेन मेन पॉइंट्स लिखकर शाम को क्या करते थे, यहाँ से स्टेशन पर जाकर जब ट्रेन का टाइम होता था तब उसको पोस्ट भेजते थे, फास्ट पोस्ट, तो दूसरे दिन सवेरे पहुंच जाती थी। तो मम्मा पहले वो मुरली पढ़ती थी, फिर लिथो की मुरली उस समय थी 63 में, तो लिथो की मुरली पढ़ती थी, फिर उन दिनों में फोर्सफुल की ग्राइंडिंग टेप थी, तो बाबा टेप भर के मम्मा को भेजते थे, फिर मम्मा वो भी सुनती थी। और मुरली सुनकर उसका मनन मंथन करके धारण करती थी, और उनका चिंतन मनन मंथन इतना अच्छा होता था कि सबको मम्मा की क्लास बहुत अच्छी लगती थी। ब्रह्मा बाबा की मुरली, साकार मुरली आप देखेंगे, इधर से उधर, उधर से उधर कई पॉइंट आती थी, और मम्मा की मुरली एक ही पॉइंट क्लियर करती थी, और धारणा युक्त खुद थी। तो मम्मा का जो नियम था सवेरे 2:30 बजे उठना, चाहे कितने भी बजे सोती थी इतना जल्दी उठ जाती थी। तो बम्बई में उस समय वाटरलू मेंशन तो छोटा सेंटर था, सिर्फ एक बड़ा क्लासरूम था जिसमें 50 के करीब बैठ सकते थे, और एक सिटिंग रूम था, एक बेडरूम था जिसमें पुष्प शांता दादी और निर्मल शांता दादी उस समय रहते थे। तो मम्मा को तो रहने की जगह ही नहीं थी, तो मम्मा जब आती थी तो मम्मा बाबा आते थे तो या तो कोई फ्लैट किराए पर लेते थे, या तो रमेश भाई का फ्लैट, उस समय उनके पास दो फ्लैट थे, एक पुराना था उसमें वो खुद रहते थे, और नया फ्लैट देव छाया में बना था उसमें मम्मा रहती थी, जमुना उनकी ब्राह्मणी थी वो साथ में रहती थी। तो मुझे ज्ञान पक्का निश्चय होने में 4 मास लग गया। मैं रोज शाम को जाती थी, पर ये शिव बाबा ब्रह्मा के तन में आते हैं और कल्प 5000 वर्ष का है और हूबहू रिपीट होता है। ये 2 प्रश्न थे। फिर उषा ने मुझे सारी यज्ञ हिस्ट्री सुनाई, कैसे कैसे दादियों के अनुभव थे। जब मैं इस दादियों के अनुभव सुने कि कैसे उनको बाबा से कितनी अच्छी भासना मिलती थी, पालना होती थी, ये जब मैंने कहानियां सुनी तो मैंने कहा ठीक है, शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते। फिर जो बाबा कहते हैं, जब शिव बाबा कहते हैं वो तो सच्ची होगा, तो इसलिए फिर निश्चय हो गया। फिर 4 मास के बाद उषा ने अपने घर बुलाया मम्मा के साथ भोजन करने के लिए। तो भोजन के पहले हम थोड़ा जल्दी पहुंच गए थे, तो क्या हुआ कि जो भाई वहां बैठा था, कानपुर से एक भाई आया था, वो उसके साथ बात होती थी, तो उसने भी हमको कैसे ब्रह्मा के तन में शिव बाबा आते हैं वो सुनाया। और वो है, बाल भवन में रहता था उस समय, 3-4 वकील जो ज्ञान में आए उन्हों के बच्चों के लिए बाल भवन बाबा ने बनाया था, क्योंकि वो वकील और उनके युगल सरेंडर हो गए, तो बच्चों के लिए बाल भवन बनाया। तो वो भाई ने अपना अनुभव सुनाया कि वो बाल भवन में रहता था, नौकरी करता था और जो कमाई होती थी सेंटर पर दे देता था, और जब भी पैसा चाहिए बस वगैरह का सेंटर से लेता था और सेंटर में रह के खाना पीना वहीं होता था। तो उस समय क्या था कि मैं नौकरी करती थी, क्योंकि मैंने मेडिकल स्टडी पूरी की। मैंने कहा बंबई में तो एक एक गली में 2-4 डॉक्टर है, वहां रहकर क्या करूंगी, मुझे गांव में जाना है, और गांव में जाने के लिए तो ऑलराउंडर बनना पड़ता है। बंबई में तो किसी को कुछ बीमारी है तो कंसल्टेंट के पास हम भेज देते हैं, गांव में कहाँ कंसल्टेंट होते हैं। तो इसलिए मैंने अलग अलग क्षेत्र में काम करना सोचा था, गवर्नमेंट या म्यूनिसिपल का नौकरी। तो पहले मैटरनिटी होम में काम किया, पीछे डिस्पेंसरी में काम किया, पीछे स्कूलों में काम किया, ऐसे बदली करती रही, क्योंकि मैटरनिटी होम में तो मैं मम्मा के टाइम जा नहीं सकती थी, पर बाबा आ रहा था तो हमने कहा कि बाबा की मुरली भी सवेरे ही होंगी, तो इसलिए मैंने पीछे स्कूल की नौकरी ली कि स्कूल में कभी 12 बजे की स्कूल होती है बच्चों को चेकिंग करने के लिए। तो फिर मम्मा ने के टाइम जब भोजन पर गई, तो 1962 में मैं जब ज्ञान में आई तब इंडिया और चाइना की वॉर चल रही थी, तो हम लोगों को ये था कि गवर्नमेंट में जो जॉब करते थे कि उनको कहा गया कि आपको नेशनल डिफेंस फंड में जो देना है वो नौकरी से कट कर लो। तो मैं 90% मेरी जो इनकम थी उसमें देती थी नेशनल डिफेंस फंड में, क्योंकि घर में रहना था, पिताजी संपन्न थे, कुछ पैसा तो देना नहीं था घर में, सिर्फ पॉकेट मनी 10% रखती थी, क्योंकि कपड़े भी तो पिताजी खरीदते थे, माँ बाप खरीदते थे, खाना पीना भी घर में होता था, सिर्फ ट्रेन की टिकट निकालनी होती थी, पास निकालना होता था, बाकी तो खास कुछ खर्चा होता नहीं था। पर जब हमको निश्चय हुआ तो हमने कहा अभी नेशनल डिफेंस फंड में नहीं दूंगी, बाबा के भंडारे में डालूंगी। तो 80% इनकम भंडारे में डालती थी बाबा के, 10% नेशनल डिफेंस में और 10% अपने पास रखती थी। और बम्बई में उस समय सिर्फ दो सेवा केंद्र थे, वाटरलू में और सायन, वो नलिनी बहन का घाटकोपर का भी बन ही रहा था। तो मुझे रमेश भाई ने कहा कि बाबा का आश्रम फ्लैट में हो ये तो अच्छा नहीं है, आश्रम कब लगेगा, जब बंगलो टाइप होगा। तो तुम कांदी वाली तरफ देखो क्या प्राइस है मकानों की। तो मैंने सोचा देखो मेरे लौकिक पिता ने सब लड़कियों के लिए डाउरी के लिए अलग पैसा रखा था, वो बिजनेसमैन था, तो जो इनकम होती थी बिजनेस में यदि वो सब अपने पास रखता था तो उसको भी 90% टैक्स भरना पड़ता था। तो उसने हम सभी बच्चों को पार्टनर बनाया, तो जो हमारा शेयर होता था हमारे नाम पर जमा करता था और लड़कियों को शादी में डाउरी देता था। तो हमारी छोटी बहनों की तो शादी पहले करा दी, क्योंकि 17 साल उस समय 1950 में 17 साल की सगाई होती थी, 19 साल को शादी। तो हमारी बहनों को उन्होंने शादी में फ्लैट दिया था। और हमारे पिताजी का जो मकान था बंगलो, उसके पीछे उसकी जमीन थी। मैंने सोचा कि बाहर मकान ढूंढने जाओ, उससे क्यों नहीं हम अपने पिताजी से ये जमीन की मांग करें कि यहाँ हम सेंटर बनाएं। पर पिताजी से पूछने के पहले मैंने ब्रह्मा बाबा से पूछा, तो ब्रह्मा बाबा कहे लौकिक पिता यदि जमीन देगा तो अलौकिक पिता मकान बना के देगा। पर हमारा पिताजी भी तो पक्का था ना व्यापारी, कहे लड़कियों को इतना नजदीक नहीं रहना है, तुम फ्लैट ढूंढो, मैं पैसा दूंगा फ्लैट का। तो फिर हमने फ्लैट ढूंढना शुरू किया। हमारे पिताजी की इच्छा थी कि मैं कांदीवली में सेवा करूं डिस्पेंसरी कर खोल के, और मेरी इच्छा थी गांव में जाने की। तो मैंने पहले तो मम्मा से पूछा कि मेरी इच्छा नहीं है कि मैं मेडिकल प्रैक्टिस करूं, बाबा की सेवा में लग जाऊं। तो मम्मा कहे तुम जब ब्रह्मा बाबा से मिलो तब पूछना। तो जब ब्रह्मा बाबा से मिली तो बाबा कहे गाँव दीवली भी तो गावना है ना, उस समय तो जरा भी डेवलप नहीं हुआ था ना, वहीं करो प्रैक्टिस। तो जब ऐसे कहा तो मैंने वहीं डिस्पेंसरी के लिए भी मकान ढूंढा और बाबा की सेवा के लिए भी फ्लैट ढूंढना शुरू किया। और उन दिनों में फ्लैट्स तो बहुत छोटे होते थे ना, वन बेडरूम या टू बेडरूम का फ्लैट होगा तो जो मेन रूम सिटिंग रूम होता है वो तो 10x12 या 10x14 का होता है। तो हमने दो फ्लैट साथ में करके एक हॉल बनाया और एक फ्लैट में एक बेडरूम सिटिंग रूम किचन और एक बाथरूम, तो एक फ्लैट के एक बाथरूम गए उसमें ही। तो समझो हमारे पिताजी ने तो उस समय कहा था 20,000 दूंगा मैं 64 में, पर हमने टोटल 40,000 का फर्नीचर ये वो सब कराया और उन्होंने दे दिया खुशी से। तो जब मैं ज्ञान में आई, मतलब मैंने 17 साल में हमारे पिताजी को कहा या तो मैं शादी करूंगी या मेडिकल स्टडी करूंगी। मेडिकल स्टडी भी हार्ड होती है और सगाई करने के लिए तो पहले कहेंगे सगाई करो, पीछे कहेंगे अभी जल्दी जल्दी शादी करो, फिर बच्चे पैदा हुए, फिर सासू जी क्या करे, वो अभी यहाँ जाओ तुम वहाँ जाओ, ये इसकी शादी हो रही है, इसकी मंगनी हो रही है, इसका जनेव है, जाओ तुम, हमने अभी सब कर लिया, अभी बहू का टर्न। तो इसलिए मैंने कहा कि ये दोनों काम हमसे नहीं होंगे, क्योंकि मेरी भाभी भी डॉक्टर थी, पर उसने कहा कि बच्चे पहले, उसकी संभाल करनी है, प्रैक्टिस घर में ही प्रैक्टिस शुरू कर दी उसने, अपना डिस्पेंसरी नहीं खोला। तो मैंने कहा मैं तो ऐसा नहीं करना चाहती हूँ, पढ़कर फिर बच्चे ही संभालने हैं तो पढ़ने का क्या फायदा। तो हमारे पिताजी की खुद की इच्छा थी कि मैं डॉक्टर बनूं, क्योंकि पढ़ने में होशियार थी, तो इसलिए बाबा ने जब कहा कि चलो तुम्हारी पिता की इच्छा पूरी करो, कामदीवली में ही सेवा करो, उनकी तो इच्छा थी मैं मैटरनिटी होम खोलूं, पर मैंने कहा मैटरनिटी होम में कभी भी डिलीवरी होती है, कभी भी डॉक्टर को हाजिर रहना पड़ता है और इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा, और मुझे कोई हमेशा करना नहीं है प्रैक्टिस, इसलिए मैंने कहा नहीं मैं तो थोड़ा ही इन्वेस्ट करेंगे। तो उसका भी खर्चा पिताजी ने दिया। तो जब 66 में हमारा मकान तैयार हुआ और सेंटर शुरू किया, 8 मई को किया, गुजरात अहमदाबाद का पहला सेंटर भी उन्हीं दिनों में शुरू हुआ था। तो समझो बाबा आए थे 64 में या 65 में बम्बई, तब मकान वैसे तैयार था परंतु इलेक्ट्रिसिटी वगैरह और NOC सर्टिफिकेट नहीं मिला था, तो दादियों ने ब्रह्मा बाबा को ले आए सिर्फ दिखाने के लिए फ्लैट। और ये तब तक कुछ हमारे 8-10 स्टूडेंट तैयार हुए थे, तो जल्दी जल्दी में उन्होंने फोन किया, बाबा आ रहे हैं। हमने जो थोड़े कुछ स्टूडेंट थे उनको बुलाया था बाबा के मिलने, और फ्लैट का अनऑफिशियल उद्घाटन करने। तो ब्रह्मा बाबा से मैं पहली बार मिली मधुबन में 1.25 साल के बाद। तो मम्मा की ये विशेषता थी, कभी अमृत वेला मिस नहीं करती थी। तो रमेश भाई के घर एक दिन रात को 12 बजे तक कोई मिनिस्टर आया था, तो मम्मा 12 बजे सोई, 2:30 बजे उठ गई। रमेश भाई कहे, मम्मा आप तो इतना देरी से सो गई और फिर उठ गई। तो कहा, मैं कैसे मिस कर सकती हूँ, मेरा पीयू को मिलने का टाइम है 2:30 बजे का, मैं मिस नहीं कर सकती। दूसरी बात की मम्मा है, बाबा को हमेशा हाँ जी, कभी भी बाबा कुछ भी कहे हाँ जी। तो एक बार मधुबन से पार्टी जा रही थी, बाबा गो सुन कम सुन टोली देता था जब हम लोग जाते थे, तो वो पार्टी बाबा से छुट्टी ही ले रही थी। तो बाबा को संकल्प आया कि इनको गरम गरम हलवा खिलाऊं। तो बाबा ने मम्मा को बुलाकर कहा, गरम गरम हलवा बना के खिलाओ उसको, इन्हों को। और दादी मनोर वहां खड़ी थी, कहा कि ये तो जा रहे हैं और बाबा मम्मा को कहते हैं गरम गरम हलवा बनाओ, पर मम्मा ने कुछ सवाल नहीं पूछा। वो चली गई किचन में, 10 मिनट में तो हलवा बन गया, थोड़ा बनाना था। और बाबा ने, क्योंकि उन दिनों में हम लोग क्या करते थे, यहाँ से बस स्टॉप तक पैदल जाते थे और हमारा सामान बैलगाड़ी में जाता था, तो वो सामान चला गया, ये लोग भी चले गए। अभी तो सामान चढ़ाते थे तब तक वो हलवा पहुंच गया साइकिल पर, तो उन्हों को गरम गरम हलवा मिल गया। एक बारी जब शुरू शुरू में क्या होता था, संदेशी ध्यान में जाते थे और ध्यान में जाकर जो दृश्य देखती थी, कई बार बाबा कहते थे शिव बाबा के ये औरों को दिखाओ। 9 बजे संदेशी आई, कहती है 9 बजे कल सवेरे लक्ष्मी नारायण का स्वयंवर दिखाना। अब मम्मा को बाबा ने बुलाया कि सवेरे 9 बजे तक ये हमको चाहिए इनका ड्रेस। उन दिनों में कोई ये नहीं थे ना, ड्रेस मेकर और किराए पर ड्रेस देने वाले। तो मम्मा को बुलाया, तो मम्मा ने क्या किया, कुछ बहनों को इकट्ठी की, जिनको सिलाई आती थी उनको ड्रेस बनाने के लिए बताया, और जिनों को ऑर्नामेंट्स बनाने आता था ज्वेलरी, क्योंकि ऑर्नामेंट्स भी बनाने पड़े, तो वो भी बनवाया। तो मम्मा ने खुद जाकर 9 बजे के पहले ड्रेस और ज्वेलरी तैयार करके दिए। मतलब मम्मा ऐसे नहीं कहा कि बाबा 9 बजे सवेरे क्या आए शाम को करें ना, हम ऐसे नहीं कहा कि कल हम बनाएंगे, नहीं, बाबा ने कहा किया। तो ब्रह्मा बाबा को मैं पहली बारी मधुबन में मिली। यहां उस समय मैं निर्मल शांता दादी के साथ यूपी पंजाब का हम लोगों ने टूर किया, और जब हम टूर करके वैसे पंजाब में जलंधर से हम दिल्ली, आगरा, जयपुर होकर मधुबन आने वाले थे, निर्मल शांता दादी इंचार्ज थी मुंबई की, और उसी समय 64 मई में मालूम पड़ा कि मम्मा को ब्रेस्ट ट्यूमर है। मतलब डॉक्टरों ने कहा कि ये ट्यूमर है, जांच करने के लिए बंबई जाओ, क्योंकि उस समय टाटा हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल थी बंबई की कैंसर के लिए। तो मम्मा बंबई आई, तो हम लोगों ने टूर छोड़ दिया और जलंधर से सीधा आबू आ गए, और उस समय हम बाबा से मिली मई में। तो बाबा के साथ पत्र व्यवहार तो हम करते ही रहे, तो जैसे ऐसे नहीं लगा कि मैं कोई बाबा को पहली बार ही मिलती हूँ, जैसे बाबा को मैं पहचानती हूँ। और बाबा से हम लोग हैं स्नान करके फिर बाबा से मिले, तो उन दिनों में 2-3 बारी बाबा को मिलते थे। पहले तो आते ही मिलते थे, पीछे गिफ्ट के लिए बाबा बुलाते थे, और जाने के पहले गो सुन कम सुन टोली लेके जाते थे। और ज्यादातर एक बारी जब पार्टी आती थी बाबा ब्रह्मा भोजन भी कराते थे, और उन दिनों में कोई ज्यादा लोग नहीं आते थे, और हम लोग हिस्ट्री हॉल में ब्रह्मा भोजन करते थे या तो ऊपर छत में भोजन करते थे बाबा के साथ, मामा के साथ। पर मम्मा को मैं मधुबन में नहीं मिली, क्योंकि बंबई में ही मम्मा ज्यादा आती जाती रही, कैंसर के कारण ट्रीटमेंट भी वहाँ करती थी और क्लासेस भी वहाँ ही करते थे। तो ब्रह्मा बाबा को मैं पहली बार ही मिली, तो मैंने पूछा कि बाबा मेरी इच्छा नहीं है प्रैक्टिस करने की। बाबा ने कहा नहीं, तुमको डबल डॉक्टर बनना। और बाबा की परख शक्ति बहुत अच्छी थी, देखते थे क्या ड्रेस पहना है, कैसे बोलते हैं, कैसे चलते हैं, और जान जाते थे। कई बार जो दादी उसको लाती थी अपने ग्रुप को, तो ग्रुप में से कोई एक दो थे उसकी बहुत प्रशंसा करती थी कि बाबा ये तो बहुत अच्छा है, सर्विसेबल है। तो बाबा 5 मिनट में परख लेते थे, ये चलेगा नहीं चलेगा, इसका पास क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। और हमने भी आते ही हम लोग क्या करते थे, 7 दिन का कोर्स करते थे और जैसे थोड़ा चलते थे तो दादियां कहती थी ब्रह्मा बाबा को पत्र लिखो, अपना परिचय दो, तो पासपोर्ट साइज फोटो भी भेजते थे और अपना पत्र भी भेजते थे कि मैं आपकी इतने दिन की बच्ची हूँ। फिर दोबारा पत्र लिखते थे एक आध दो मास के बाद कि मेरे जीवन की कर्म कहानी क्या। तो हमारे कर्म कहानी तो यही थी, कभी कभी भाई बहनों का झगड़ा होता था और क्या होता था, क्योंकि हम 6 बहनें और 2 भाई थे, बाकी तो कुछ था नहीं। तो जब बाबा ने पत्र देखकर हमारा फोटो देखा, जैसे बाबा ने पहचान लिया, तो रतन मोहिनी दादी बम्बई से यहाँ आ रही थी। उन दिनों में दादी बम्बई में रहती थी अपनी लौकिक माता के साथ, शील दादी भी अपनी माँ के साथ लौकिक घर फ्लैट बना के दिया था भाइयों ने, उसमें रहती थी। पुष्प शांता दादी को भी इसकी बेटी ने एक फ्लैट दिया कुलाबा में, अभी भी वहाँ सेंटर है। तो समझो रतन मोहिनी दादी पत्र हमारा ले आई, फिर जब वापस आए कहा तुमको बाबा ने अच्छी रीत से पहचान लिया। और जब भी पत्र लिखता था रेड पेंसिल से लिखता था, तो उसमें कुछ न कुछ टाइटल लिखता था, सरल चित है, ऑनेस्ट है, डबल डॉक्टर, निर्मला आश्रम आदि आदि। तो समझो ब्रह्मा बाबा से पहली बार मेडिकल का पूछा, दोबारा मकान के लिए पूछा। तो ऐसे समझो जो भी हमारे जीवन में कार्य करना होता था, हम बाबा से या तो पत्र व्यवहार से या पर्सनल मिलकर बातचीत कर लेती थी। तो यहाँ तो क्या है, मम्मा बाबा से मिलना कोई मुश्किल नहीं था, नहीं? वहाँ तो साधु संत के पास जाओ, अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है, और साईं बाबा के पास जाओ तो हजारों के बीच में मिलना होता है, और वो भी बस आशीर्वाद देकर भसम देकर काम उतार लेता है। यहाँ तो मम्मा बाबा से कभी भी मिलो, दादियों से भी कभी भी मिलते थे, दादी वेलकम करती थी, प्रकाशमणि दादी। क्या होता था कि जब से मैं विदेश गई तो हमारा कनेक्शन ज़्यादा जानकी दादी से था, पर प्रकाशमणि दादी बम्बई में 64 से थी और मैं 71 तक तो बम्बई में थी, तो प्रकाशमणि दादी से भी हमारा अच्छा कनेक्शन था। बड़ी दीदी दिल्ली में थी तो उनके साथ हमारा इतना डीप कनेक्शन नहीं था, क्योंकि विदेश में जाने के बाद भी शुरू में समझो 74 तक दादी जानकी विदेश नहीं आई थी, मैं तो 71 में चली गई थी विदेश में। तो प्रकाशमणि के दादी के साथ ही हमारा कनेक्शन था। तो प्रकाशमणि दादी भी बहुत हल्के, सवेरे यहाँ स्पेशली सर्दी के दिनों में बाहर निर्वर भाई की ऑफिस के बाहर कुर्सी लेकर बैठ जाती थी और जानकी दादी के पास बहुत लंबी क्यू लगती थी विदेशियों की। और दादी एक एक की बात सुनकर दृष्टि देकर फिर राय सलाह करते, और कभी हमको तो पेशेंट नहीं रहता था। छोटी मोटी बात होती थी तो मैं प्रकाशमणि दादी से पूछती थी कि मैं मिलने आऊँगा, चलो आओ आओ, और दो मिनट में काम हमारा हो जाता था। तो ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए 69 में, मम्मा ने जब शरीर छोड़ा मैं घर में ही रहती थी, तो समझो मम्मा के बाद मैं नहीं यहाँ आई थी। पर ब्रह्मा बाबा जब अव्यक्त हुए तो हमारे पास रात को फोन आया ब्रिजेंद्रा दादी का, क्योंकि प्रकाशमणि दादी यहाँ थी, उसने सब जोन इंचार्ज को फोन करती गई और बताती गई कि आपके जोन में सेंटरों पर बता देना। तो ब्रिजेंद्रा दादी बम्बई की इंचार्ज थी, महाराष्ट्र की भी, उन्होंने फोन किया, निर्मला ड्रामा पर हडोल है, फिर समाचार दिया कि ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए। फिर हम लोग, हम तीन थे सेंटर पर, हम तीनों बैठ गए योग में, और हमारी दो साथी थी वो कहे हम तो जाएंगे मधुबन। तो दूसरे दिन सवेरे ट्रेन पकड़ के आ गए। हमने कहा कि भाई सब चले जाएंगे, सवेरे क्लास में स्टूडेंट के समाचार कौन देगा। तो उस समय मैं और शील दादी गामदेवी में वहाँ वो रही, और मैं वहाँ थी कांदीवली में, हम दो रहे, बाकी सब नलिनी बहन और ये वो सब आ गए यहाँ, ब्रिजेंद्रा दादी वगैरह। तो हमने एक दो दिन तो निकाले, फिर 20 तारीख को फोन आया प्रकाशमणि दादी का कि आप दोनों भी आ जाओ, मैं और शील दादी 21 को यहाँ पहुँचे। जस्ट बाबा का अंतिम संस्कार होने वाला था यहाँ, क्योंकि उन्होंने स्पेशल परमिशन ली यहाँ अग्नि संस्कार करने की, नहीं तो कंपाउंड में तो नहीं करते हैं ना अग्नि संस्कार। तो यहाँ टावर ऑफ पीस है, वहाँ अग्नि संस्कार, उस समय तो खाली मैदान ही था, और हम लोग चारों तरफ जो भी मकान थे वहाँ खड़े रह गए थे, और जस्ट अग्नि संस्कार हुए, हमने देखा जैसे ओम प्रकाश भाई, महेंद्र भाई, इंदौर वाले ओम प्रकाश भाई, महेंद्र भाई भोपाल में थे, आंखों से आंसू आ रहे थे। और दो दिन तो प्रकाशमणि दादी ने नहीं रोया, पर लास्ट दिन प्रकाशमणि दादी क्लास में आंसू बहाया है, सारा क्लास नेचुरली दादी को आंसू आ गए और बोलती थी तो सभी को आंखों में आंसू आ गए। सबको मेन चिंता ये थी अभी ब्रह्मा बाबा गया हमारी मुरली कौन सुनाएगा। फिर शाम को संदेशी ने सारा क्लियर किया कि मुरली रिवाइज होंगी, दीदी दादी आपके इंचार्ज होंगी, अव्यक्त बाब दास से मिलन होगा आदि आदि। फिर सभी शांत हो गए और दूसरे दिन मीटिंग भी की, क्योंकि म्यूजियम का मकान 18 को ही फाइनल हुआ था कि अभी म्यूजियम बनावे या नहीं। तो हम सभी ने कहा नहीं नहीं जरूर सर्विस तो करनी ही है ना, जरूर करेंगे। और सभी हल्के हो गए तो दादी ने जो भी नहीं भी आए थे उन्हों को भी बुला लिया कि आओ हल्के हो जाओ। और फिर तो जैसे आप जानते हैं कारोबार चलता ही रहा। मम्मा बाबा गए, दीदी दादी ने शुरू शुरू में तो सब कंपेयर करते थे, ओ मम्मा हमको ये करती थी ये बेचती थी, बाबा हमको ये भेजते थे ऐसे चलाते थे। पर एक साल के अंदर सभी ने कहा नहीं हमको दीदी दादी से मम्मा बाबा की वासना आती है। और सब खुश हो गए। तो ब्रह्मा बाबा के टाइम में सिर्फ 125 सेंटर थे और दादी ने जब शरीर छोड़ा 120 देशों में सेंटर। तो दादी ने बहुत सेवा बढ़ाई प्रकाशमणि दादी। और जब दादी ने शरीर छोड़ा सभी ने कहा हम माँ को मिस करते हैं, क्योंकि दादी बहुत स्नेह स्वरूप थी, सबकी राय लिए सलाह लेकर चलती थी और खेलना कूदना क्रिकेट खेलना बैडमिंटन खेलना पीस पार्क ले जाना सबको वहाँ भी खेलना। तो दादी पढ़ाई में भी नंबर वन थी, कोई मुरली मिस नहीं करते थे। आजकल तो ज्ञान सरोवर में हमारे समर्पित भाई 50% भी क्लास में नहीं आते, उस समय यहाँ कोई मिस नहीं करते थे मुरली। तो अभी भी विदेशी याद करते हैं ना, अंत में दादी आए ना ऐसे ऐसे गुलदस्ता लेकर आती थी, आज सुनाओ बाबा ने मुझे क्या कहा, क्योंकि मुरली के पहले बाबा के कमरे में जाती थी और कुछ न कुछ संदेश ले आती थी। तो जो दादी के टाइम में यहाँ थे वो याद करते हैं दादी कैसे आकर पहले पहले संदेश सुनाती थी। तो मम्मा बाबा दादियों की पालना लेने का हमको अच्छा ही सौभाग्य मिला। ओम शांति। अभी 7:30 तक योग करेंगे। तुम्हारे
तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। जिसे पाकर न पाना कुछ शेष रह जाए, पाके इतना बाबा अपना दिल अब तो गाए, साथ अपने है जग का जो रखवाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। तेरी आंखों से पीते हम हैं अमृत प्याले, बड़ी जतन से छुपा कर नजर में हो पाले, तुम्हारे याद के मोती गले की माला, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। बाबा कहते हो यही बच्चे मेरे ताज तुम्हें, नैन के नूर लाड लो मेरी आवाज तुम्हें, मेरी दुनिया में तेरे दम से उजाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तेरी नजर का असर दिल ने तुम्हें जान लिया, दिल ने दिल में ही अपना तुझे सब मान लिया, दिल के ताऊस तख्त पर तू दिल वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। मिले न स्वर्ग में वो सुख लुटाने वाला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला।